मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज नवंबर का आखिरी दिन यानी कि 30 नवंबर 2018 है और आज के इस afias.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग विचारों के बारे में बातें कर रहे हैं और काफी लंबे समय से हम लोग इस पर बात करते आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि जब कोई भी बात इतने लंबे समय तक की जाती है तो उसके अलग अलग आयाम यानी कि जो डायमेंशंस होते हैं हम उनको कवर करते हैं और जब लगातार एक ही विषय पर लंबी बातचीत हो रही हो तो डेफिनेटली सुनने वालों पर भी उसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही अधिक होता है और मेरा विश्वास है कि कुछ इसी तरह का अनुभव आप भी इस विषय के बारे में कर रहे होंगे। तो आइए इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं विचारों को बीज कहूं तो शायद मेरी बात आप लोगों तक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से पहुंच सकेगी। यानी कि विचार बीज होते हैं। आप बरगद के बीज को देखिए, बीज कितना छोटा सा है। क्या आपको उस बीज में वह बरगद दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। हां, अगर आपने कभी बरगद का वृक्ष देखा हो तब डेफिनेटली उस बीज में आप उस वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कितना भी बताता रहूं कि बरगद इतना विशाल होता है, इतनी उसकी चौड़ाई होती है, इतने लंबे समय तक वह जीवित रहता है, आप सुन लेंगे, बौद्धिक स्तर पर आप उसे स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में दृश्य चित्र नहीं बनेगा। और जब तक दृश्य चित्र नहीं बनेगा तब तक सच मायने में आप उस बीज की महत्ता को भी नहीं समझ पाएंगे। विचारों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इस बारे में मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, व्यक्तिगत तौर पर भी हुई है, समूह के रूप में भी हुई है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो सुनते समय तो उन्हें ये बात अच्छी लगती है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते पड़ते उनके दिमाग में धुंधली हो जाती है। उन्हें लगता है कि ठीक है, ऐसा होता होगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। या कह लीजिए कि अगर मैं करना भी चाहूं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मित्रों, मुझे लगता है हम सबको इस गलत फहमी से उबरने की कोशिश करनी चाहिए और आप उबर जाएंगे अगर आप इस बीज के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि एक बीज में ही वट वृक्ष छिपा होता है। लेकिन क्या अपने आप उस बीज से वट वृक्ष प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। आपको उस बीज के साथ कुछ करना पड़ेगा। विचार भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वही वट वृक्ष बनकर हमारे जीवन को स्वरूप देते हैं, एक शेप उपलब्ध कराते हैं। भले हम इसे पकड़ न पाए, इसे समझ न पाए, इसे पहचान न पाए, लेकिन होता यही है। एक छोटा सा विचार जो हमारे दिमाग के अंदर है, सच पूछे तो वो पूरे के पूरे हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स, आप देखिए कर्ण और दुर्योधन, महाभारत में इन दोनों की भूमिका को देखिए आप। दुर्योधन के दिमाग में जो विचार है वो नकारात्मक है, जबरदस्त रूप से नकारात्मक विचार है, जिसे आप दुर्गुण भी कह सकते हैं। कर्ण के दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं है। शुरू में आप देखिए कि कर्ण महादानी है, महाज्ञानी है, पांडवों का पुत्र है, पांडवों का भाई है, सूर्य का पुत्र है, कुंती उसकी माता है, और कुंती ही तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सबकी माता है। तो कर्ण में आप शुरू में बहुत अच्छे तत्व पाएंगे, बहुत अच्छे तत्व हैं। लेकिन उसके मन में एक विचार आता है, विचार आता है प्रतिशोध का। छोटा सा विचार, बीज है ये, सीड है, कि मुझे बदला लेना है। किससे बदला लेना है? अर्जुन से बदला लेना है। अर्जुन से क्यों बदला लेना है? क्योंकि अर्जुन ने जब प्रतियोगिता हो रही थी तब उसके साथ लड़ने से इस आधार पर मना कर दिया था, या अर्जुन को मना करवा दिया गया था, क्योंकि वह एक सूत पुत्र है। और ठीक इसी तरह से द्रौपदी ने भी स्वयंवर से उसे इसलिए बाहर कर दिया था क्योंकि वह सूत पुत्र है, और बाद में इसी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होता है। तो स्वाभाविक रूप से कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति एक विद्रोह का भाव पैदा हो गया, विरोध का भाव पैदा हो गया और लगातार वह उससे प्रतिशोध लेने के विचार से परेशान होने लगा। केवल एक छोटा सा विचार, और इसी छोटे से विचार ने दुर्योधन और कर्ण की इतनी गहरी मित्रता कराई, क्योंकि दुर्योधन तुरंत भांप गया कर्ण को देखने के बाद कि इसके मन में क्या चल रहा है। दुर्योधन ने उसका फायदा उठाया। मित्रों, अन्यथा मैंने जितना भी महाभारत को समझा है, जितना भी पढ़ा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, दुर्योधन उतनी हिम्मत जुटा ही नहीं सकता था। अब आप देखिए कि एक छोटा सा विचार, प्रतिशोध का विचार, न केवल कर्ण को कहां से कहां ले गया बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को कहां से कहां ले गया। ये विचारों की ताकत होती है, आप इसे कह सकते हैं विचारों की कमजोरी होती है, जो भी आप कहना चाहें। अगर विचारों की भूमिका नकारात्मक है तो आप उसे कमजोरी कह सकते हैं, और अगर सकारात्मक है तो आप उसे उसकी ताकत कह सकते हैं। तो विचारों में जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, वो है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत का मतलब है कि यूं समझ लीजिए इसे कि हमारे जो विचार हैं वो चुंबक भी होते हैं, बीज तो होते ही हैं, क्योंकि उससे फिर दूसरे विचार उत्पन्न होते चले जाते हैं। बीज से तो उत्पन्न होता है, वो बड़ा रूप लेता चला जाता है, लेकिन चुंबक की बात थोड़ी सी अलग है। चुंबक में जो मेरे विचार हैं वही बड़े नहीं होंगे बल्कि समान विचार को आकर्षित करेंगे। अगर मेरे अंदर बुरे विचार हैं तो मैं हमेशा बुरे विचार को पसंद करूंगा, और जहां भी बुरे विचार चल रहे होंगे मुझे वो बहुत पसंद आएंगे और मैं उनके बीच जाकर के बैठ जाऊंगा, उन्हें ग्रहण करूंगा, और सच बात यह है कि उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा और उनके समर्थन में तर्क भी दूंगा। समर्थन में तर्क देना ही उनकी रक्षा करना है, उन्हें मैं बढ़ाऊंगा। दूसरों को भी जब देना होगा तो मैं अपने दिमाग में जो मेरे बुरे विचार हैं मैं वही उन्हें दूंगा भी। तो आकर्षण का सिद्धांत और देने का सिद्धांत भी विचारों के साथ जबरदस्त रूप से काम आता है। आप महाभारत के प्रसंग में देखिए कि वहां विदुर हैं, विदुर नीति शास्त्री हैं, महान नीति शास्त्री हैं, और वो दरबारी हैं, दुर्योधन के दरबार में रह रहे हैं, लेकिन उनके विचार अच्छे हैं, बीज के रूप में वो अच्छे विचारों से भरे हुए हैं। तो दुर्योधन के बुरे विचार उनको आकर्षित नहीं कर पाते, उनको अच्छे विचार आकर्षित करते हैं, कृष्ण आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब कृष्ण अंत में चाह रहे हैं कि युद्ध न हो, दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि दुर्योधन तुम अभी भी मान जाओ, पांडव सिर्फ 5 गांव मांग रहे हैं, 5 ग्राम उन्हें दे दो, बात खत्म हो जाएगी। शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो कृष्ण कहां रुकते हैं, महल में नहीं रुकते, दुर्योधन के महल में नहीं रुकते, वो विदुर के यहां जाकर के रुकते हैं, और विदुर उन्हें अपने यहां रुकवाते भी हैं। तो कृष्ण और विदुर का ये जो मेल है, जो मित्रता है, ये शरीर की मित्रता नहीं है, ये मूलतः विचारों की मित्रता है। और जो सच्ची मित्रता होती है मित्रों, वो विचारों की ही मित्रता होती है, क्योंकि विदुर भी नीति शास्त्री हैं और कृष्ण भी नीति शास्त्री हैं, तो दोनों के समान विचार इनको आकर्षित कर रहे हैं। यहां मैं एक बात आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, विज्ञान के सिद्धांत के तहत हम देखते हैं कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक आप कहते हैं, धन विद्युत और ऋण विद्युत, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन मित्रों, हर जगह वही चीजें लागू नहीं होती हैं, विचारों की दुनिया में ये थोड़े से बदल जाते हैं। अभी अभी मैरी कॉम को आप देखिए, और मैं चाहूंगा कि आप किसी भी की भी सफलता असफलता में जो उनके विचारों की भूमिका होती है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपको जीवन के बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देंगे। अभी मैरी कॉम सोच करके देखिए कि 6वीं बार विश्व चैंपियन बनी है, 6वीं बार, चलिए हम मान लेते हैं कि 6वीं बार बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अदरवाइज तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को एक एक बार बनने में पसीना आ जाता है। लेकिन दूसरी पृष्ठभूमि देखिए, केवल 6वीं बार विश्व चैंपियन बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि वो 3 बच्चों की मां है। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद शारीरिक क्षमता और उनके अंदर के जोश को देखिए, और अभी जब प्रतियोगिता होनी थी तो प्रतियोगिता से ठीक पहले उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो सब परेशान हो गए कि क्या होगा। मना भी किया गया कि आप मत उतरिए रिंग में, मत खेलने जाइए, प्रतियोगिता में मत जाइए, लेकिन दिमागी ताकत ने मैरी कॉम से कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। जो भी इलाज होना चाहिए था लिया, वो रिंग में उतरी और प्रतियोगिता जीती। जीतने के बाद फिर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब मजेदार बात यह है कि जब वो रिंग में थी तब तो वो मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में है, वो सामान्य खेल नहीं खेल रही है। आपको शरीर और मानसिक दोनों ताकतों की जरूरत है। तो जब तक वो रिंग में है तब तक तो वो ठीक है, और जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई वो जीती, वैसे उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। ऐसा क्या हुआ? जब वो लड़ रही थी तब तबीयत ठीक थी, और जब लड़ना उन्होंने बंद कर दिया तो तबीयत खराब हो गई। फिर से उनका इलाज हुआ और फिर 2-1 घंटे के बाद वो फिर ठीक हो गई। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जब वो रिंग में थी तो उनके पास साफ विचारों की ताकत थी कि नहीं, मुझे जूझना है। लेकिन जैसे ही जूझने का दौर खत्म हुआ, दिमाग ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, जो होना था हो गया, मैं तो जीत चुकी हूं। दिमाग कमजोर पड़ा, शरीर ताकतवर हो गया और बीमार पड़ गया। दोस्तों ये है विचारों की ताकत, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप तो किसी का भी मूल्यांकन इस आधार पर करेंगे तो आपको उसकी सफलता के केंद्र में या उसकी असफलता के केंद्र में उसके विचार दिखाई देंगे। बिल गेट्स का नाम आप सब ने सुना है। बिल गेट्स से पूछा गया था कि आपकी सफलता का आधार क्या है, बेसिक क्या है, उसकी नींव क्या है, तो उन्होंने बहुत छोटा सा उत्तर दिया था, अपने विचारों की बदौलत, दैट्स ऑल, कि मैं जो कुछ भी हूं अपने विचारों के कारण हूं। तो मित्रों अब इसी के साथ ही आज के मैं इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।